स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। जैसे हमने पिछले हफ्ते प्रारंभ किया हमारे नए लेक्चर सीरीज गोवर्धन लीला से, जिसको हमने शीर्षक दिया है अ हिल दैट थ्रिल्स। और गोवर्धन लीला ये भगवान की एक ऐसी प्रसिद्ध लीला है जहां भगवान ने न केवल अपनी महानता दिखाई बल्कि अपनी महानता के साथ अपनी मधुरता, और दोनों महानता और मधुरता के साथ हमें हमारी साधना भक्ति में क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ये सिखाया। कृपा करके आपके सेलफोन्स साइलेंट मोड पर कर लीजिए। तो हमने पिछली दफा जो श्लोक लिया था वही श्लोक हम आज भी लेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै। हंताय मद्रिरबल हंत ओ अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ। यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गो गणयो गौवें बछड़े तथा ग्वाल बाल तयो उन दोनों अर्थात श्री कृष्ण तथा बलराम। यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौवों बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय शब्द से गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित जल का यह द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता था। सूर्यवस दूर्वा अर्थात दूर्व घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञान। भगवान ने जब 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन धारण किया, तो भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। साधारणतः जब कोई नेता होता है या लीडर होता है, जब वो अपना ऐश्वर्य दिखाता है या अंग्रेजी में कहें प्रोवेस, अपनी शक्ति, जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है या अपने कलाओं या काबिलियत का प्रदर्शन करता है, तो जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके मन में एक ऐश्वर्य का भाव आ जाता है उस नेता के प्रति या उस लीडर के प्रति। और ऐसे ऐश्वर्य भाव के वजह से जो अनुयायी होते हैं वो उस लीडर से थोड़ा डर कर दूर रहते हैं। Whenever a leader shows prowess and opulence, he distances himself from followers. क्योंकि अनुयायियों को लगता है कि ये मुझसे बहुत प्रगत हैं या मुझसे बहुत शक्तिशाली हैं और मैं इनके सामने नगण्य हूं। तो इस भावना के वजह से जो अनुयायी हैं वो लीडर से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। परंतु गोवर्धन लीला में आप देखो उल्टा हुआ। भगवान ने सर्वप्रथम जो अपनी शक्ति और महानता की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया, उस सर्वप्रथम लीला में ब्रजवासी और निकट आए। लॉजिक के अनुसार, इस भौतिक संसार के लॉजिक के अनुसार, जब कोई अपनी महानता दिखाता है तो अनुयायियों को थोड़ा डिस्टेंस करता है। महानता दिखा रहा है इसलिए वो कि भाई तुम थोड़ा दूर रहो, क्योंकि मैं महान हूं तुम लहान हो, उस प्रकार से। तो भगवान ने गोवर्धन लीला में, या ब्रजवासियों ने और भगवान ने मिलकर इस गोवर्धन लीला में भौतिक संसार का ये जो लॉजिक है इसको डिफाई किया. दैट ऑपुलेंस ऑफ अ लीडर डिस्टेंसेज हिम फ्रॉम द फॉलोअर्स. कृष्णा डिफाइड दैट लॉजिक. भगवान ने अपनी महानता दिखाई और सात दिन जो भगवान ने अपनी महानता इसके पहले नहीं दिखाई थी उसके उस समय ब्रजवासी अलग अलग अपने अपने घरों में या थोड़े दूर रह रहे थे, परंतु ये सात दिन ये सारे ब्रजवासी भगवान के इतने निकट आए कि भगवान हर क्षण हरेक ब्रजवासी जो हरेक भगवान के रसों में स्थित था भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया निरंतर. तो इसे क्या समझ में आता है कि भगवान के वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो इस भौतिक संसार के लॉजिक रीजनिंग और लॉज के विपरीत है. क्यों? क्योंकि वो शुद्ध प्रेम के स्तर पर है. इसलिए हमें ब्रजवासियों के पदचिन्हों पर चलते हुए इन लीलाओं को समझना है और अपने जीवन में उतारना. तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक गोवर्धन लीला पढ़ते समय एक ऑब्जर्वेशन आया मेरे सामने कि भगवान की महानता ने उनके अनुयायियों को निकट लाया, जबकि इस भौतिक संसार में उल्टा होता है. तो पिछले दफा का एक शॉर्ट रिकैप हम ले लेंगे. भगवान ने गोवर्धन लीला की, हमारे आचार्यों ने ऐसी ऐसी टीकाएं दी हैं, उन टीकाओं का निचोड़ 8 कारण निकाले हैं. भगवान ने गोवर्धन लीला की इसके 8 कारण. सर्वप्रथम देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु भगवान ने गोवर्धन धारण किया. दूसरा कारण गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु. तीसरा कारण गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु. चौथा कारण ब्रजवासियों की अटूट श्रद्धा दर्शाने हेतु. ये हम देखेंगे कि इस पूरी लीला के दौरान ब्रजवासियों ने अलग अलग समय अपनी अटूट श्रद्धा भगवान के सामने प्रस्तुत की. पांचवा कारण ब्रज के सभी निवासियों के साथ निरंतर 7 दिन और 7 रात रसास्वादन करने हेतु भगवान ने ये लीला रची. छठा कारण देवताओं की पूजा की तुलना में शुद्ध भक्ति की महिमा दर्शाने हेतु. सातवां कारण कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश करने हेतु. और आठवां कारण कलयुग के बद्ध जीवों को सबसे पावन तीर्थ स्थान भगवान ने इसके द्वारा दिया. प्लीज पुट इट ऑन साइलेंट. तो हमने भगवान ने जो 23वें अध्याय में ब्राह्मणों का उद्धार किया, तो 23वां अध्याय और 23वें अध्याय के पश्चात ये 24वां अध्याय जहां पर भगवान ने अब गोवर्धन पूजा ये लीला की या गोवर्धन पूजा को करवाया, तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं कि भूदेव याज्ञिक ब्राह्मणों को कहा गया है और नरदेव देवराज इंद्र को. तो याज्ञिक ब्राह्मण जो कि भूदेव हैं उनको वृक्षों के द्वारा सुधारा या वृक्षों का उदाहरण देकर उनको सुधारा, और देवराज इंद्र को एक पर्वत के द्वारा. तो ये प्रसिद्ध श्लोक हमने लिया था, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कि ये वृक्ष जो है उनका जन्म सफल है क्योंकि इन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया है भगवान और सभी जो जीव हैं उनके सेवा करने हेतु। तो भगवान यहां पर ये बता रहे थे कि जो ब्राह्मण हैं वो तो भगवान को भी भोग न दे सके, बाकियों को क्या देते हो। तो इन ब्राह्मणों से भले ये वृक्ष जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने हेतु। और फिर इंद्रदेव को ठीक करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत का उदाहरण लिया कि एक तरफ वृक्ष और दूसरी तरफ वृंदावन का एक पर्वत, जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है ब्रजवासियों की सेवा करने हेतु। तो हमने सबसे पहला जो कारण भगवान गोवर्धन लीला किए इसको प्रारंभ किया था, एक दिन मान इंद्र को मार्यो नख ऊपर गोवर्धन धार्यो नाम पढ़ियो गिरिधारी श्री राधे श्याम श्याम श्याम। तो देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि न केवल ये ब्रजवासी बल्कि पूरी सृष्टि वो मेरे कृपा पर जी रही है। हमारे आचार्य कहते हैं कि देवराज इंद्र को ऐसा अभिमान हो गया था कि वो भूल चुके थे कि भगवान अवतरित हो चुके हैं। तो हमारे एक टीकाकार वो लिखते हैं, वीर राघव आचार्य, कि देवराज इंद्र ये भूल चुके थे कि भगवान अपने आध्यात्मिक संसार को छोड़कर इस भौतिक संसार में आ चुके हैं। तो लिखते हैं कि जो फॉलोअर्स जो हैं वो अपने आप को लीडर कब मानते हैं, जब लीडर नहीं होता है। जब लीडर आसपास नहीं होता है तो फॉलोअर्स फिर अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड लीडर मान लेते हैं, परंतु जैसे ही लीडर आ जाता है तब फिर फॉलोअर्स वो संभल जाते हैं। तो यहां पर देवराज इंद्र वो संभले नहीं, क्यों? क्योंकि उनको ये ध्यान में ही नहीं आया, ये इंफॉर्मेशन था उनके पास कि भगवान अवतरित हो गए, परंतु ये ध्यान में क्यों नहीं आया कि भगवान इन ब्रजवासियों के बीच, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन ब्रजवासियों के बीच हैं जो हर वर्ष मेरी पूजा करते हैं। तो क्यों ध्यान में नहीं आया? बहुत सुंदर टीका करते हैं वो हमारे आचार्य। वो कहते हैं कि देवराज इंद्र को ध्यान में न आना, यह है वृंदावन की महिमा। कैसे? कि वृंदावन की महिमा ऐसी है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी वहां पर आ जाएं तो देवराज इंद्र जैसे देवता वो भी पहचान नहीं पाते कि साधारण ग्वाल बाल कौन है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। यह है वृंदावन की महिमा। कैसे? क्योंकि वृंदावन की महिमा है वृंदावन का शुद्ध प्रेम, केवला भक्ति। तो उस शुद्ध प्रेम ऐसी केवला भक्ति के वजह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी साधारण दिखते हैं। तो देवराज इंद्र का ध्यान भ्रमित होना भगवान से, इसमें वृंदावन की महिमा है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। किंग इंद्र फॉरगेटिंग दैट कृष्णा हैज इनकार्नेटेड इज अ टेस्टिमोनी ऑफ द ग्लोरीज ऑफ वृंदावन। तो भगवान फिर भी देवराज इंद्र का जो अभिमान है वो चूर चूर करना चाहते थे, क्रशिंग द प्राइड ऑफ इंद्र। ये सबसे पहला कारण। तो हमारे जितने श्रीधर स्वामी, वीर राघवाचार्य, जीव गोस्वामी, इनकी सारी टीकाओं का जो निचोड़, जिसके अंदर चार प्रकार के अभिमान बताए देवराज इंद्र के। अच्छा, हमने हमारी पिछली सेटिंग में ही क्लियर कर दिया था कि ये जो चार प्रकार के अभिमान देवराज इंद्र के बताए हैं, ये आचार्य हम साधकों के अभिमान बता रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि बेचारे इंद्र, उनके ये अभिमान थे। बेचारे देवराज इंद्र चार प्रकार के अभिमान से पीड़ित थे। आचार्य कह रहे हैं कि हम हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि भगवान देवराज इंद्र को सूत्रधार बना रहे हैं। केवल उनको सूत्रधार बनाकर हमको बता रहे हैं कि हमारे चार प्रकार के अभिमान कौन से हैं। तो इसके विषय में मैं सोच रहा था, प्रभुपाद ने एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि जब एक वधू, नवविवाहिता वधू अपने ससुराल आती है तो कैसा सीन होता है? अभी नई नई शादी हुई है और अरेंज्ड मैरिज है, जहां ससुराल वाले वो वाकिफ नहीं है। मंगल आरती हो गई है वैसे, देख लीजिए उनको आता है साइलेंट करना, नहीं आता है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। हो गया? पक्का? एक हम नियम लागू करेंगे आज से, क्लास में किसी का भी सेलफोन बजा उनको 500 रुपया डोनेशन में डालना पड़ेगा वहां उसी समय। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जब एक वधू, नवविवाहिता वधू आती अपने ससुराल, तो सब कुछ नया है। ससुराल वालों के लिए एक नया मेंबर है और उसके लिए ससुराल वाले नए हैं। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि अब सास को अपनी बहू को कुछ बताना है, कुछ शिक्षा देनी है, तब वो रिलेशनशिप इतना एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि वो डायरेक्टली बहू को कह दे। आजकल पता नहीं होता होगा डायरेक्टली, लेकिन श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि थोड़े कल्चर्ड फैमिलीज में वो डायरेक्टली अपने बहू को नहीं कहती कि बहू बर्तन ठीक से मांजे नहीं। पता नहीं आजकल तो बहू बर्तन भी नहीं मांजते होंगे। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो यदि सास को बहू को कुछ बताना है करेक्शन, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि वो सास जो है वो अपनी बेटी को बोलेगी, और बेटी ने कुछ नहीं किया है, बेटी ने हो सकता है कि बर्तन अच्छे से मांजे हों, या बेटी की जिम्मेदारी नहीं थी उस दिन बर्तन मांजने की, हो सकता है उसका टर्न ना हो सेवा लिस्ट में, लेकिन फिर भी वो मां अपनी बेटी को पहले कहती है, अरे, और वो भी थोड़े स्ट्रांगली बोलती है, और कैसे कहती है, जब वो बहू आसपास हो वो सुन सके, थोड़ा सुना कर बोलती हो, शर्म नहीं आती ऐसे बर्तन मांजती है। अब वो बहू बुद्धिमान होनी चाहिए कि वो समझ जाए कि ये निशाना कहां लगा है, किसके कंधे पर रखकर ये निशाना चलाया गया और किसके ऊपर चलाया गया। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि बहू को ठीक करने के लिए सास जो है वो अपनी बेटी को बताती है। इसको कहते हैं अ वेरी कल्चर्ड वे टू करेक्ट समवन। हमें भी हमारे वैष्णव रिलेशनशिप में ही सीखना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली तीर कमान निकालकर शुरू कर देते हैं, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है हम वैष्णव रिलेशनशिप के अंदर भी कि ठीक है, यदि किसी ने गलती की है उसको अगर करेक्ट भी करना है तो उसका एक तरीका होता है उसको करेक्ट करने का। अब देखिए यहां पर भगवान ने देवराज इंद्र को क्यों यूज किया, हमको ये हमारे चार अभिमान बताने के लिए। जैसे कि अगर फिर से हम ये उदाहरण समझने की कोशिश करें, तो जो सास है वो अपनी बेटी को क्यों इस्तेमाल करती है बहू को ठीक करने के लिए। दो कारण है। सबसे पहला कारण, वो जो बेटी है वो बुद्धिमान है और वो मैच्योर्ड है, वो समझ जाती है कि ये मेरे ऊपर कमेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, वो समझ जाती है कि ये मेरे ऊपर कमेंट नहीं है। तो वैसे ही देवराज इंद्र वो मैच्योर्ड हैं ये समझने के लिए कि मेरे ऊपर कमेंट नहीं है। और दूसरा कारण कि बेटी को चाहे कितनी भी जोर से वो मां चिल्ला कर कहे, वो मां और बेटी के अंदर इतना गहरा रिश्ता अब तक हो चुका है बचपन से लेके अब तक कि वो बेटी उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द डॉटर हैज बिकम सो थिक और सपोज टू बिकम सो थिक दैट द डॉटर विल नॉट मिसअंडरस्टैंड दैट व्हाई शी इज स्कोल्डिंग मी अननेसेसरली। तो भगवान अगर हम में से किसी को चुनते हमारा अभिमान चूर चूर करने के लिए पर्सनली, तो हम तो उसको हैंडल ही नहीं कर पाते. Why me? मैं क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र, ये पूरी लीला के अंत में आप देखो कि देवराज इंद्र ने कितने मैच्योरली उसको समझ लिया और आकर क्षमा मांगी, प्रार्थनाएं की. तो इससे समझ में आता है कि भगवान ने उनको सूत्रधार बनाया उनके इन गुणों को देखते हो. तो पिछले दफा हमने चर्चा की थी, पहला अभिमान गुण अभिमान, कि देवराज इंद्र के अंदर उनके गुणों का अभिमान हो गया था. उसके पश्चात पद अभिमान, उसके पश्चात ऐश्वर्य अभिमान और अनुयायियों का अभिमान. तो हमारे अंदर भी ये चार प्रकार के अभिमान श्रृंखला के रूप में एक के बाद एक के बाद एक आते रहते हैं. पहले हमारे अंदर गुण आते हैं, गुण के बाद हमें अब पद चाहिए, नहीं तो गुणों का क्या फायदा. पोजीशन चाहिए. व्हेन वी गेट क्वालिटीज वी वांट पोजीशन बिकॉज ऑफ दोज क्वालिटीज. जब पोजीशन प्राप्त हो जाता है तो बिना फैसिलिटीज के, बिना ऑपुलेंस के वो पोजीशन भी किस काम का. सो अलोंग विथ पोजीशन और आफ्टर पोजीशन वी वांट फैसिलिटीज, ऐश्वर्य. और ये सब कुछ किस काम का, जब तक कि अनुयायी नहीं है आपके, तो फॉलोअर्स. तो हमने चार प्रकार के जो नम्र उदाहरण हैं इसकी तुलना में या इसकी विपरीत, उसकी चर्चा की थी हमने पिछली बार. गुण अभिमान के लिए प्रहलाद महाराज, कि जिनके अंदर ऐसे गुण जिन्होंने नरसिंह भगवान को शांत किया, जिन्होंने अपने गुणों के वजह से भगवान का एक नया अवतार हमारे सामने प्रस्तुत करा कर दिया. सोचो क्या गुण है प्रहलाद महाराज के. ही गेव अस अ न्यू इनकार्नेशन. ऐसा गुण प्रहलाद महाराज के अंदर कि भगवान बिना माता पिता के हिरण्यकशिपु के खंभे से पैदा हुए. तो ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के सामने अपनी नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो एक दैत्य हूं, मैं तो एक राक्षस हूं, एक राक्षस योनि में मैं पैदा हुआ हूं, तो मुझे आप प्रलोभित मत कीजिए वरदान ये देते हुए. पद अभिमान में अम्बरीश महाराज का उदाहरण कि इतने बड़े राजा, गुणवान और गुणवान होने के साथ साथ जिनका इतना बड़ा पद, पूरी पृथ्वी के ये सम्राट, और दुर्वास मुनि, उन्होंने जो अपराध किया, अम्बरीश महाराज नम्रता से उस अपराध को स्वीकार किए. कई बार हमारे साथ जब दुर्व्यवहार होता है बिना कारण, तो हम इतने आग बबूले हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, और विशेष रूप से उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों. हम ये भूल जाते हैं कि जो भी कुछ दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ होगा और जिस किसी व्यक्ति ने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उस दुर्व्यवहार और उस आदान प्रदान के अंदर हमारा उस व्यक्ति के साथ एक सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्ति का, हम उसको भूल जाते हैं. When devotees, they have conflicts, they forget that within that conflict there is a principle of bhakti established by Krishna. And whenever we miss out to see that principle or that siddhanta, that conflict persists eternally. हर समय वो नित्य काल तक वो द्वंद्व वो क्लेश बना रहेगा। जब हम उस सिद्धांत को नहीं देखेंगे जो कि प्रस्थापित हो रहा है उसके द्वारा, तो अम्बरीश महाराज ने वही देखा। और अम्बरीश महाराज का नाम श्रीमद् भागवत में क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने दुर्वास मुनि ने जो उनके साथ किया, उन्होंने वो टिट फॉर टैट एटीट्यूड नहीं रखा, होता ना टिट फॉर टैट एटीट्यूड, उसने मेरे साथ ये किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट एटीट्यूड। तो टिट फॉर टैट एटीट्यूड है क्या कि भगवान के नजरों में होता क्या है? अभी मान लो अगर हम अम्बरीश महाराज की जो कथा, इसमें हम अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, इस कथा में हम अपनी स्क्रिप्ट बनाएं कि दुर्वास मुनि ने, जैसे ये जो सिनेमा में दिखाते हैं कि विलन ने ऐसा किया तो हीरो उसने ऐसा किया, है ना, फिर पिक्चर हिट होती है। अगर विलन ने कुछ किया और हीरो हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है कि मेरी गलती के वजह से, तो पिक्चर तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और उसका नेक्स्ट शो भी देखने कोई आएगा नहीं। तो ये जो बॉलीवुड की पिक्चरें, ये हिट क्यों होती हैं कि विलन ने हीरो के साथ ऐसा किया, उसके परिवार के साथ ऐसा किया, उसकी हीरोइन के साथ ऐसा किया, तो मैं बदले की आग दिखाकर तुझे चूर चूर करूंगा। और उनके टाइटल्स भी ऐसे होते, मां कसम मार डालूंगा, तो अब भौतिक संसार में ये जो टिट फॉर टैट एटीट्यूड है, ये बहुत लोग इसमें मजा लेते हैं। ये अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि की कथा में लोगों को मजा नहीं आता है, क्या है ये हाथ जोड़ के माफी मांग ली है, अरे कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं, कुछ मजा ही नहीं आया। तो हमारे दृष्टिकोण में हमको उसमें मजा आता है जब दोनों, हाँ इसने ये किया तो इसने इसके साथ ऐसा किया, उसने फिर ऐसा किया तो उसने और 2 कदम ये किया, उसने ऐसा और, हाँ अब मजा आ रहा। तो मान लो अगर हम अम्बरीश महाराज की कथा को चेंज करें भौतिक दृष्टिकोण से, कि दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने वो राक्षस पैदा किया, अपने बाल से एक राक्षस पैदा किया और आदेश दिया खत्म कर दे इस अम्बरीश को, और अम्बरीश महाराज वहां पर वो सीना तान के वो दुर्वास मुनि से कहते हैं, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है, किसने बुलाया था यहां पर तुमको पहले? सबसे एक तो बिन बुलाए यहां पर आए हो, और मैं अच्छा भला तुमको खिलाने वाला था अभी, भाई मेरा राज्य है, मेरा महल है, मैं पानी पीऊं, मैं खाऊं, कुछ भी करूं, तुमको क्या? अम्बरीश महाराज अगर ये भाषा बोलते कि ठीक है उखाड़, कितने बाल उखाड़ता है, कितने राक्षस उखाड़ता है, निकाल मैं भी दिखाता हूं, मेरे पास सुदर्शन है भगवान का दिया हुआ, निकाल कितने राक्षस निकालता है, निकाल। तो मान लो अम्बरीश महाराज अपना सुदर्शन, भगवान द्वारा दिया गया सुदर्शन निकालते, या पूरी सेना को बोलते खत्म कर इसको, पहले दोनों को बाहर निकालो, राक्षस को दुर्वास मुनि को। तो मानो अगर अम्बरीश महाराज ये भाषा बोलते तो भगवान कृष्ण की नजरों में दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज में कोई अंतर नहीं। हमको बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है अभी, है ना, अरे ऐसा होता तो कितना अच्छा होता है, मजा आता, थोड़ा बोलने में मजा आ रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, मसालेदार है, तो ये हमारा दृष्टिकोण है, ये भौतिक दृष्टिकोण है। परंतु भगवान अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि को एक जैसे मानते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। तो वैसे ही जब भक्तों के बीच में ये अनबन होती है या क्लेश होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो अगर एक ने ऐसा किया, अब मैं देखूं, उसको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, उसने ऐसा किया, मैं बताता हूं, उसको भी समझ में आएगा कि मेरे रगों में भी मेरी माँ का खून है, मैंने भी मेरी माँ का दूध पिया है, बॉटल का नहीं है। तो फिर भगवान की नजरों में मैं और वो एक जैसे हो गए। तो हुआ क्या, भगवान की नजरों में वो भी फेल, मैं भी फेल, ईयर डाउन दोनों का, रहो भाई भौतिक संसार में रहो, लड़ते रहो। व्हाट आर वी अचीविंग? जीरो, एब्सोल्यूट बिग जीरो। तो ये सारे उदाहरण इसलिए दिए गए हैं, जैसे ये पद अभिमान में अम्बरीश महाराज का उदाहरण, कि उस समय जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, उस समय हम अम्बरीश महाराज की शरण ग्रहण करते हैं या अपने अभिमान की, दैट इज द टेस्ट। हाल ही में मैं इसके विषय में चर्चा कर रहा था कि जब हम भक्तों के बीच में कुछ होता है तो हम हर समय वो व्यक्ति को लेकर और उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो भगवान द्वारा भेजा गया क्वेश्चन पेपर है मेरा, जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है वो व्यक्ति भगवान द्वारा भेजा गया परीक्षा का पेपर है, और उसने जो दुर्व्यवहार किया है वो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो भगवान ने तो क्वेश्चन पेपर भेज दिया और क्वेश्चंस भेज दिए, अब हमारे ऊपर है कि हम आंसर कर रहे हैं या और क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आया क्यों? जैसे मान लो कि कोई विद्यार्थी वो एग्जामिनेशन हॉल में गया, उसको वो इनविजिलेटर होता है, उसने जाके क्वेश्चन पेपर दिया, सबको बांट रहा है वो तो क्वेश्चन पेपर, उसको क्वेश्चन पेपर, ये क्यों दिया भाई? बोले क्यों दिया मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जी काटने आए हो? तो मानो वो विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर हाथ में लिए ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों दिया। तो वैसे ही जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है और भगवान उस व्यक्ति को क्वेश्चन पेपर बनाकर भेजे हुए हैं, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं भगवान को ही, क्यों भेजा क्वेश्चन पेपर? तो भगवान पूछते हैं, भाई तुम ही तो प्रार्थना कर रहे हो कि तुमको प्रगति करनी है, दूसरी क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ग्रेजुएट होना है कि नहीं होना है। तो ये समझना चाहिए कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम उस सिद्धांत को देखें, भगवान की योजना को देखें कि भगवान हमें और उत्तीर्ण करने के लिए ये एक परीक्षा का पेपर भेजे हैं। और होता है ना, जितना कठिन क्वेश्चन पेपर होता है उतनी बड़ी डिग्री मिलती है ना। अभी मान लो कि कोई पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहता है और उसको क्वेश्चन पूछा गया 2+2 बताओ कितना, 5+5 बताओ कितना, तो उसको डाउट आ जाएगा ना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चंस मेरे को डिग्री क्या मिलने वाली है, इसको आंसर भी करूंगा तो तो हम लोग क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोग जब ये सब मुद्दे सुनते हैं क्लास में तो हम भगवान से कहते हैं ठीक है भगवान क्वेश्चन पेपर भेजो, लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भेजना, उसमें 2+2 टाइप एकदम कठिन उसमें मत भेजना क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होगा मुझसे। तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो फिर तुमको डिग्री भी उतनी मिलेगी। तो हम चाहते हैं पीएचडी डिग्री, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन चाहते हैं अर्थमेटिक के 2+2, 5+5, बट वी एक्सपेक्ट दैट वी शुड गेट पीएचडी डिग्री। तो इसे यह समझना है कि जब भी हमारे जीवन में सबसे कठिन से कठिन हमारा गॉड ब्रदर आए हमारे सामने, जो सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर है हमारे लिए, मतलब जिस गुरु बंधु के साथ हमारा एकदम इजीली जमता है, तो समझना चाहिए तो यूनिट टेस्ट है। मतलब क्या वो तो टेस्ट ही नहीं है, वो कॉपी का पर्चा है, फर्रे होते ना फर्रे। और जो गॉड ब्रदर हमारा सबसे ज्यादा हमको तकलीफ में डाल रहा है, उसके वजह से मेरे रोम रोम नींद नहीं आ रही है, रोम रोम मेरे सब पुलकित हो रहे हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, तो समझना चाहिए कि भगवान हमें सबसे बड़ी डिग्री देने के लिए ये क्वेश्चन पेपर भेजे हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर तो समझ गए, क्वेश्चंस उसके अंदर वो भी समझ गए, आंसर कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर किधर मिलेंगे, तो आंसर मिलेंगे ये किताबों में। होता ना जैसे वो विद्यार्थियों के लिए 21 सेट्स पहले आते थे ना, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस डाइजेस्ट, तो ये सब ये सारे आप कोई भी, चाहे वो आपकी कैसी भी समस्या हो, वो सारे समस्याओं या क्वेश्चंस के आंसर यहां पर हैं। अब यदि हमने इन पुस्तकों को कभी पढ़ा ही नहीं है तो खाक लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे क्या, बस मेरी खुद की राम कहानी, फिर जो कपोल कल्पित हमारे मन में जो चल रहा है बस वही लिखेंगे हम, जब कुछ आता नहीं तो वही लिखेंगे। इसलिए जो प्रगत भक्त हैं जैसे अम्बरीश महाराज, उनके सामने जब दुर्वास मुनि जैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं तो वो इतना अच्छा पढ़ाई किए हुए हैं कि तुरंत वो क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन जो सही विद्यार्थी है वो पूरा क्वेश्चन भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देता वो, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई की है उसने। और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की वो पूरे क्वेश्चन पेपर को 10 बार ऊपर से नीचे आगे से पीछे पढ़ लेता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि ये सिलेबस में से ही है क्या। लास्ट में उसका क्वेश्चन क्या रहता है, 10 क्वेश्चन जो उसको पूछे गए उसके बाद में 11वां क्वेश्चन उसका रहता है, ये सिलेबस में से ही है क्या। तो ये अम्बरीश महाराज हमें सिखा रहे हैं, प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं, ऐश्वर्य अभिमान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान सुदामा के चरण धोए, और वो भी जब वो द्वारकाधीश बने हुए थे, अपनी पटरानियों के सामने राजमहल के अंदर सुदामा के चरणों को धोया पिया और अपने पटरानियों को दिया, और सुदामा की वो मैली थैली में से वो सूखे जो पोहा था वो खाया सबके सामने। तो भगवान दिखा रहे हैं कि मैं, मेरे से बड़ा ऐश्वर्यशाली कौन हो सकता है, और भगवान नम्रता बता रहे हैं सुदामा की लीला में। भगवान शिव जी, हमने इसकी कथा ली थी, मोहिनी मूर्ति की कथा, कि कैसे अपने अनुयायियों के सामने भगवान शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज, पिछले बार हमने इसकी चर्चा नहीं की कि ये जो अनुयायी थे, मोहिनी मूर्ति ने भगवान शिव जी के अनुयायी के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल दिया था कि भगवान शिव जी के अनुयायी वो मोहिनी मूर्ति को मोहिनी नहीं पहचान रहे थे, उनको ये साधारण स्त्री दिख रही थी कि अरे साधारण स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। यदि वो पहचान लेते कि मोहिनी मूर्ति है, भगवान विष्णु है, तो वो तो गुणगान करते कि देखो हमारे जो नेता हैं वो भगवान विष्णु की शक्ति से विमोहित हुए। बट द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा देवर कवर्ड ओवर बाय द इंटरनल पोटेंसी ऑफ मोहिनी मूर्ति, that they saw Mohini Murthy as an ordinary woman and Lord Shiva running after an ordinary woman. तो ये चार प्रकार के नम्र उदाहरण। हमारे वृंदावन प्रसाद प्रभु ने रिसेंटली मुझे एक सुंदर कार्टून भेजा, मैंने सोचा कि बहुत ही उपयुक्त है यूज करने के लिए, कि हमारी भी स्थिति ऐसी होती है, हमें भगवान, भगवान के प्रतिनिधि मदद करने के लिए हाथ ऊपर से नीचे किए हैं, हम लटके हुए हैं इस टहनी पर, नीचे खाई, टहनी इतनी पतली वो भी टूट रही है, ऊपर से हाथ भी दिया जा रहा है, मदद के लिए हाथ भी आ रहा है, क्या चाहिए हमारी तरफ से? वो जो इतना बड़ा झोला पकड़े हुए है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा अभिमान, हमें उसे छोड़ना है पहले। जब तक कि हम उस काले झोले को पकड़कर रखेंगे, तब तक भगवान की जो कृपा है वो कदापि प्राप्त नहीं होगी। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मध पुमान नैवार हत्या भिधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं, वो कहती हैं एदमान मध, कि ये जो अहंकार है ये मध, ये नशे के समान है। अभिमान, कुंती महारानी कहती है ये जो अभिमान है ये नशा है, नशा। जैसे लोग नशा करते हैं, अलग अलग प्रकार का नशा करते हैं, कोई सिगरेट का नशा करता है, कोई दारू का नशा करता है, दारू के अंदर भी कितनी वैरायटीज हैं, कोई विस्की पीता है, कोई रम पीता है, कोई वोडका पीता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब कुछ मिलाकर पी रहा है, उसने रम भी डाल दिया, विस्की भी डाल दी, वोडका भी डाल दिया, जिन भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। तो कुंती महारानी कह रही हैं इसे कहते हैं अभिमान का कॉकटेल। ये सब मिश्रण को कॉकटेल बोलते हैं ना। तो कुंती महारानी श्लोक में बोल रही हैं कि अभिमान का कॉकटेल क्या है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, इनको मिक्स करके बिना पानी के नीट पी रहा है, टेकिंग इट नीट। जन्म का अभिमान, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, वो भी कलयुग में हिम्मत करते हैं लोग बोलने की कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए वो एक अभिमान कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की रचना इस प्रकार से की है कि ये जो जितने ऐश्वर्य कुंती महारानी कह रही है ना, अगर लोग इसको, कोई भी व्यक्ति इसको पकड़कर आए इस्कॉन के अंदर, तो वो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं अपने स्वयं की बात बताता हूं, अभी ये जो शरीर है, ये भौतिक काया, ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ मेरा, तथाकथित ब्राह्मण कह सकते हैं, वो भी गौड़ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी उनको ऊंचा माना जाता है। कार्य तो कुछ किए नहीं कभी ब्राह्मण के, लेकिन हाँ लिखते समय कास्ट गौड़ ब्राह्मण ऐसा लिखता था मैं एप्लीकेशन में, एकदम गर्व से गौड़ ब्राह्मण है भाई। फिर इस्कॉन में जब बताया गया कि यहां पर आपको गुरु की शरण ग्रहण करनी है, तो कौन है, अमेरिका से एक विलायती है, हैं? अंग्रेज, अंग्रेज को मैं गुरु बनाऊं है, सवाल ही नहीं। तो ये कौन सा अभिमान था मेरा, जन्म का अभिमान चूर चूर हो गया। प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश के लोगों को, अंग्रेजों को ब्राह्मण दीक्षा नहीं, उनको सन्यासी बनाया, और वो भी ऐसे स्तर पर, ऐसे उनको पद दिए इस्कॉन के अंदर कि वो यहां पर हम तथाकथित जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनको सिखाया कि कैसे रोज नहाना चाहिए। पहले तो यदि कोई अपना ये जन्म अभिमान लेकर इस्कॉन में आएगा तो देखेगा कि ये अंग्रेज, जिनको कई भारतीय म्लेच्छ बोलते हैं, अंग्रेजों को बहुत से भारतीय या ब्राह्मण म्लेच्छ बोलते हैं, म्लेच्छ, म्लेच्छ का अर्थ क्या है, मलम इच्छति इति म्लेच्छ, जो मल का, मल की इच्छा करता है वो है म्लेच्छ। तो अगर कोई जन्म को लेकर, उस अभिमान को लेकर, वो कभी इस्कॉन में भक्ति नहीं कर पाएगा। कोई अगर ऐश्वर्य को लेकर आएगा, ऐश्वर्य का अर्थ है मैं कितना धनवान हूं, मेरा कितना नाम है, तो भाई यहां पर आने के बाद सबको लंबा होना पड़ता है भगवान के सामने, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे कितने भी बड़े लखपति हो, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, वो नतमस्तक नहीं हो सकते ऐसे पूरा लंबा, हाँ दूर से भगवान को ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब भगवान को बता रहे हैं कि मैं भी हूं, मैं भी आ गया, आप ही नहीं हो क्या, खाली मैं भी हूं, मैं भी हूं। तो ये जो प्रभुपाद ने सिखाया पूरा लंबा दंडवत करना, कई बार आप देखो हम लोग अभी एकदम जैसे दर्शन खुलता हम लोग स्वाभाविक रूप से दंडवत कर देते हैं भगवान को। कई बार आपने अगर ऐसा अनुभव किया है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत मित्र है, बड़ा घनिष्ठ मित्र है, या जो भी, जो इस्कॉन के बारे में कुछ जानता नहीं, उस वो मंदिर में आ गया और उसके सामने आपको दंडवत करना है, तो कई बार थोड़ा संकोच करते हैं, अरे इसको कैसा लगेगा, बोले ये क्या हो रहा है, अचानक लंबा हो गया पूरा, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, तो उसके सामने थोड़ा संकोच करते हैं कि भगवान को बोल दे, भगवान मैं बाद में दो कर दूंगा आपको, इसको इसको जाने दो पहले। तो जो ऐश्वर्यशाली है वो भगवान के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते, प्रेस्टीज इशू हो जाता है कि मैं झुकूं कैसे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो फिलॉसफी होती होगी। फिर कुंती महारानी कहती हैं, ऐश्वर्य श्रुत जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए, वो लोग भी जब इस्कॉन में आते हैं बहुत पढ़ लिख लिए, शास्त्र पढ़ लिया, और इस्कॉन में आने के बाद एक नया नया प्रचारक व्यासासन पर बैठा हुआ है, दसवीं पास भी नहीं है, वो भागवत सामने रख के बोल रहा है, युग धर्म है हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र जब तक नहीं करोगे तब तक भगवत धाम जाना असंभव। तो जो बहुत पढ़ लिख लिया है वो बोलेगा कि क्या खाली हरे कृष्ण महामंत्र और कुछ नहीं? हाँ बस और कुछ नहीं। नास्त्येव 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 गतिरन्यथा एव केवलम 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 केवलम। तो जो बहुत पढ़ लिख लिया है वो सुनता है बस इतना ही, क्योंकि जिसकी बुद्धि इतनी भरी हुई है इस सब चीजों से तो उसको उसको कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। तो अगर कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड दिमाग वाला आएगा तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा इस्कॉन में, ये कुंती महारानी बोल रही। और कोई अगर बहुत सुंदर रूपवान है, श्री भी बहुत सुंदर मॉडल है कोई, या सिनेमा का बॉलीवुड का एक्टर है, हाँ, वो आया यहाँ पे आया, बहुत सुंदर दिखने वाला है, मॉडल है, सब जगह उसके बिलबोर्ड में, वो मैगजीन के कवर पेज में उसके सब फोटो हैं, और यहाँ पर लेक्चर में आके बैठा है, और फिर प्रचारक बोल रहा है हम तो शरीर ही नहीं है, लो कर लो बात, आगे करेगा क्या तू अभी मॉडलिंग, हम शरीर ही नहीं है, और ये शरीर है क्या? मान लो वो एकदम सज धज के आके लेक्चर में बैठा है और प्रचारक बोल रहा है शरीर है क्या? मल मूत्र कफ वात पित्त से भरा हुआ है, एक गोनी है, गोनी गोनी में डाल दो ये सब, ये शरीर ये ना ये चमड़े की गोनी है, और ये गोनी के अंदर मल मूत्र, वो सुन रहा है सब, मेरी तो लोग फोटो खींचते रहते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं मेरे, तो मानो वो बोला किसका ऑटोग्राफ दे रहे हो? मल मूत्र का ऑटोग्राफ दे रहे हो? वो फोटो खींच रहे किसकी फोटो खींच रहे हैं? बस तुम्हारा ढका हुआ मल मूत्र की फोटो खींच रहे हैं। तो सोचो अगर वो ऐसा सब सुनेगा तो बहुत मुश्किल है, उठ के चला जाएगा, क्योंकि भाई उसकी जीविका चल रही है इसके ऊपर, उसके रूप के ऊपर उसकी जीविका चल रही है। तो कुंती महारानी कह रही है कि कोई बहुत सुंदर दिखने वाला है वो कभी तिलक नहीं लगा सकता, अरे अजीब दिखेगा तिलक, नहीं नहीं ये क्या मट्टी लगा लिया ऊपर, कंठी माला नहीं पहन सकता, धोती नहीं पहन सकता, क्यों? क्योंकि अपीयरेंस ठीक नहीं रहेगा, फैशन नहीं है, फैशनेबल नहीं दिखूंगा मैं, तिलक लगाने से फैशनेबल नहीं दिखूंगा, सोचो सर मुंडवाने से वो अगर हो जाए तो क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा एक मित्र, वो जब पहली दफा मेरे को मिला तो सबसे पहले उसको मेरी चिंता हो रही थी, मतलब कई बार हमको लगता है कि हम उसकी चिंता करें, वो मेरी चिंता कर रहा था, बोला यार तेरी जुल्फे कहां गई, और उसकी चिंता क्या थी वो मेरे को पूछ रहा, तू तो ऐसे बाहर भी जाता है ऐसे ऐसे सर मुंडवा के, मतलब हाँ बाहर जाते समय तो करके जाते हैं हमसे। तो कुंती महारानी कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध मान मध पुमान, ये जो कॉकटेल भौतिक संसार में लोग पी रहे हैं हर क्षण हर दिन, किस चीज का कॉकटेल? जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर, इसका जो इंटॉक्सिकेशन बनाकर पी रहे हैं दिन रात। नैवार हत्या भी धातुम वै अभी धातुम, अभी धातुम का अर्थ है, कुंती महारानी कहती अभी धातुम का अर्थ है उनके अंदर कभी भावना से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होने वाला है। दे कैन नेवर कॉल आउट फॉर कृष्णा विथ फीलिंग, अभी धातुम का अर्थ हुआ है, फीलिंग से नहीं कभी वो भगवान। हाँ आएंगे, ठीक है, सुंदर है आपके भी भगवान, आपके भी भगवान सुंदर है, मैं तो हुई ये भी है, फीलिंग से नहीं आएगा। इसलिए कुंती महारानी कहती है त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि भगवान ने अपने आप को रिजर्व कर कर रखा है किनके लिए, जो अकिंचन है, जो अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, किंचित, अकिंचन का अर्थ है, किंचित का अर्थ है कुछ मानना, अकिंचित का अर्थ है कुछ भी नहीं मानना कि मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों को कह रहे थे, उनके शिष्य प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे कि प्रभुपाद आपने इतना बड़ा इस्कॉन प्रस्थापित किया अकेले, प्रभुपाद उनको उधर ही बीच में रोक दिया, स्टॉप दिस। प्रभुपाद ने कहा हु आर वी, और प्रभुपाद एकदम इंटेंसिटी से बोले, प्रभुपाद कहे वी आर नॉन एंटिटीज इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, नॉन एंटिटीज इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कुछ भी नहीं है आप, उसको कहते हैं अकिंचन, अकिंचन गोचर। तो यदि भगवान श्री कृष्ण को हमें प्राप्त करना है तो हमारे अंदर वो अकिंचन गोचरण वो वाला भाव आएगा, तब कुंती महारानी कहती है कि हाँ तब उस नशे से बाहर आएगा वो व्यक्ति, ये जो नशा चढ़ा हुआ है सबको, जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री का। तो इस गोवर्धन लीला के अलग अलग शिक्षाओं में से यदि हम देवराज इंद्र, ये जो प्रथम शिक्षा हम देवराज इंद्र से ले रहे हैं, देवराज इंद्र की तरफ देखें और भगवान कृष्ण की तरफ देखें, तो यहां पर हम ये सीख सकते हैं, एक तरफ है लीडर और एक तरफ है मैनेजर, क्योंकि हम भी इस्कॉन की एक संस्था में हैं, तो हमें यह सीखना आवश्यक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहा गया है ही इज अ ट्रू लीडर, और देवराज इंद्र वो कौन है, ही इज सिंपली अ मैनेजर। तो कैसे इन दोनों में डिफरेंस, अ लीडर ही ऑलवेज ट्रेन्स हिज फॉलोअर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, सॉरी एक मिनट उसको पीछे दो, तो प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया है अपने गीता के परपोर्ट्स में, बीइंग इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। तो मैनेजर कौन होता है, जैसे इंद्र, ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की तो बिदक गए इंद्र, व्हाई, बिकॉज ही वांटेड टू कंट्रोल, और फिर संवर्तों को भेजा कि खत्म कर दो, विध्वंस कर दो। तो ये है एक टिपिकल मैनेजर का एटीट्यूड, कंट्रोल करना बस. बट अ ट्रू लीडर इज दैट पर्सन हु क्रिएट्स फैसिलिटीज फॉर द फॉलोअर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट. जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन के मैनेजर नहीं बने, लीडर बने अर्जुन के, क्योंकि उन्होंने गीता सुनाई. और कैसे गीता सुनाई कि अर्जुन वो भगवान से सुनना चाहते थे कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए. और फिर भगवान ने सब कुछ देने के बाद अर्जुन को इंडिपेंडेंस दिया. क्या है वो, यथेच्छसि तथा कुरु, इंडिपेंडेंस दिया. दैट इज अ ट्रू लीडर. जैसे नारद मुनि ने मृगरारी को प्रचार किया. मृगरारी को प्रचार करने के बाद नारद मुनि चले गए. अब वो नहीं कि नारद मुनि वहां से रोज मृगरारी को ईमेल कर रहे हैं, मृगरारी तुमने शिकार बंद किया कि नहीं किया. आफ्टर प्रीचिंग टू मृगरारी, नारद मुनि गेव द इंडिपेंडेंस टू मृगरारी, वेदर ही वॉन्ट्स टू नाउ किल और वेदर ही वॉन्ट्स टू फॉलो नारद मुनि. कंट्रोल नहीं कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो जब तक तुम नहीं करोगे. तो कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि अगर मैं किसी के ऊपर कंट्रोल कर लूं और वो मेरे कंट्रोल में आ जाए और मेरे कंट्रोल में आकर मेरा बताया हुआ जो है वो करे, मरता क्या ना करता करे, तो हमको लगता है मैं लीडर बन रहा हूं. नहीं, ही सिंपली अ मैनेजर. Because he's forcing control and getting things done by control. But leader is opposite. Leader makes the follower independent. He creates facilities to make the follower independently thoughtful. Prabhupada use karte hain Gita mein. Making the follower independently thoughtful, not controlling. इसमें रिस्क है. हाँ, कंट्रोलरशिप में रिस्क नहीं है कि हाँ मैं दबाव से कुछ काम करा लूं, उसके अंदर रिस्क नहीं है. बट गिविंग इंडिपेंडेंस देयर इज अ रिस्क. क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंस दे रहा हूं तो बैकफायर भी हो सकता है कि नहीं. अगर मैं किसी को इंडिपेंडेंस दे रहा हूं कि ठीक है मैं तुमको फ्रीडम दे रहा हूं, इंडिपेंडेंस दे रहा हूं, तो वो इंडिपेंडेंटली कुछ गलत भी करेगा ना, मेरे अगेंस्ट भी कुछ कर सकता है, उसमें रिस्क है बहुत बड़ा. तो जब तक कि लीडर वो रिस्क नहीं लेता तब तक उसको क्वालिटी फॉलोअर नहीं मिलेंगे. मैनेजर विल गेट क्वांटिटी people controlled by him, leader will get quality followers even though small in number. जैसे भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण अगर हम फिर से लें, तो भगवान श्री कृष्ण ने अल्टीमेट रिस्क लिया, खतरा मोल लिया. अल्टीमेट रिस्क क्या लिया? हम लोगों को इंडिपेंडेंस दिया, फ्री विल. ये जो फ्री विल है ये बहुत बड़ा रिस्क भगवान ने लिया है हमको देकर. लोग अक्सर ये इनिशियली गीता कोर्स में क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान ने फ्री विल दिया ही क्यों? अरे हम फिर कभी ये सब गलत काम नहीं करते थे. बिकॉज कृष्ण इज अ ट्रू लीडर, ही डजंट वॉन्ट टू कंट्रोल, ही वॉन्ट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, not force us into spiritual world. Therefore he has given us free will and he is running a big risk. What is a big risk? We are still here. But he is waiting and he is hopeful. And therefore he keeps sending his representatives, his scriptures. He comes himself. Why? To make us realize, not to control over us, but to make us realize how to use our free will properly. भगवान अलग अलग तरीके से ग्रंथों के द्वारा, अपने युग धर्म के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, धाम के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा भगवान आकर हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटे, मैंने जो तुमको फ्री विल दिया है ना, उसको ठीक से यूज करना। भगवान अपना सुदर्शन लेकर हमारे कनपट्टी पर रखकर बोलते थे, चल जप कर, मांसाहार छोड़। हाँ, तो डर के मारे हम ऐसे छोड़ो। जैसे कई जो धर्म है वो लोग कहते हैं ना, जस्ट बिलीव एंड यू विल बी रिडीम्ड। भगवान ने कहीं पर गीता में नहीं कहा जस्ट बिलीव इन मी। भगवान ने कहा ओके, आई एम टेलिंग यू, इट्स अप टू यू नाउ whether you want to follow me or you want to do whatever you want to do. Another very important aspect of a person who is a true leader like Krishna, before demanding surrender, he gives shelter. अब देखो, ज्यादातर कोई अगर लीडर बनना चाहता है या मैनेजर बनना चाहता है, वो पहले सरेंडर डिमांड करता है। शेल्टर देना बाद में देखेंगे, पहले सरेंडर। बट कृष्णा, ही फर्स्ट गिव्स हिज शेल्टर एंड देन ही एक्सपेक्ट्स अस टू सरेंडर। ही डजंट फोर्स अस टू सरेंडर, ही एक्सपेक्ट्स, बट फर्स्ट ही गिव्स शेल्टर। सो कृष्णा इज लाइक अ ट्री, पेड़ के तरह, वृक्ष के समान है भगवान कृष्णा। जैसे वृक्ष है वो सबको शेल्टर, आश्रय देता है, चाहे वो कोई पंछी अपना घोंसला बनाना चाहे, चाहे कोई लकड़हारा वहां से लकड़ी काट कर ले जाना चाहे, या कोई यात्री छाया चाहे उस पेड़ की। पेड़ जो है वो अपना शेल्टर सबको दे रहा है, एक पंछी को दे रहा है, एक यात्री को दे रहा है, एक लकड़हारे को दे रहा है, सबको दे रहा है निस्वार्थ भाव से। किसी को भी पेड़ नहीं कहता है कि पहले पानी डालो फिर मेरे नीचे खड़े हो। कभी पेड़ ने कहा? धूप है, मैं छाया तब दूंगा जब तुम पहले पानी डालो। कोई अगर पंछी या पक्षी घोंसला बनाने आए तो पेड़ नहीं कहता है कि पहले मेरे को पानी डालो फिर मेरे ऊपर घोंसला बनाओ। So just like tree gives shelter first without expectations, Krishna is like that. A leader should be like that. First should give shelter without expecting surrender. तो इंद्र क्या कर रहे थे? नहीं, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मेरी पूजा नहीं की, मैं दिखाता हूं अभी। ही इज नॉट अ लीडर, ही लूजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ लीडर। तो भगवान ने दिखा दिया ब्रजवासियों को, नंद महाराज जो इतने आदर सत्कार से इनकी पूजा करते थे, तो भगवान ने कहा कि देखो, जिनको तुमने अपना लीडर मान रखा था इतने वर्षों तक, देवराज इंद्र को, एक वर्ष उनकी पूजा आपने नहीं की तो अपना रूप दिखा दिया उन्होंने, तो ये लीडर नहीं है। अब देखो, जो हम ये मुद्दा कह रहे हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी रिस्क ली है कि हमको फ्री विल दिया, जबकि अब देखो, हम अगर किसी को स्वतंत्रता देते हैं, भाई ठीक है मैं तेरे को इंडिपेंडेंस देता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है तेरे को कंट्रोल करने की। जब मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं, तो भैया रह तू स्वतंत्र। लेकिन भगवान के पास ताकत है हमारे फ्री विल को कंट्रोल करने की, ताकत है भगवान के पास, लेकिन फिर भी भगवान हमको इंडिपेंडेंटली फ्री विल दिए हैं। ये भगवान की लीडरशिप क्वालिटीज है। ये सीखना चाहिए हमको कि हमें भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए कैसे, यदि हमको किसी को लीड करना है भगवान के बिहाफ पर, तो कैसे करना है। ये भगवान इंद्र के द्वारा हमें समझा रहे हैं। डोंट बिकम अ कंट्रोलर, डोंट सिंपली बिकम अ मैनेजर, बिकम अ ट्रू लीडर। क्रिएट फैसिलिटीज फॉर योर फॉलोअर्स टू बिकम इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। तो संस्कृत में एक बहुत ही उपयुक्त न्याय है, इसको कहते हैं तरतम्य न्याय। तो ये जो देवराज इंद्र का अभिमान, इसको हम तरतम्य न्याय से समझें तो तर का अर्थ है बेटर और तम्य का अर्थ है बेस्ट। तो जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में, मैंने इसकी इसका कंपैरिजन इंग्लिश ग्रामर से किया, तो इंग्लिश ग्रामर में आप देखो हमने ये सीखा होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये क्या है? ये तरतम्य न्याय। तरतम्य न्याय क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। क्योंकि इस भौतिक संसार में हर चीज अलग अलग लेवल्स पर है, अभिमान भी अलग अलग लेवल्स पर है, नम्रता भी अलग अलग लेवल्स पर है, श्रद्धा भी, प्रेम भी अलग अलग लेवल्स पर है। इसको कहते हैं तरतम्य, अलग अलग लेवल्स पर। तो यहां पर हम अभिमान के लेवल समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। तरतम्य न्याय से हम अभिमान के लेवल समझने की कोशिश कर रहे हैं और देवराज इंद्र के अभिमान के लेवल्स। तो अभी अगर हम इंग्लिश ग्रामर के ये तीन लेवल्स को लें और तरतम्य न्याय के न्याय को लें, तो अभिमान को गुड, बेटर, बेस्ट नहीं बोलेंगे। अभिमान में गुड, बेटर, बेस्ट नहीं होगा। तो तरतम्य न्याय के अनुसार बैड, वर्स, वर्स्ट होगा। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ने कहा कि भाई तुमको कैंसर है, तो कैंसर में कभी डॉक्टर ऐसा बोलता नहीं गुड, बेटर, बेस्ट कैंसर। बीमारी के लिए डॉक्टर क्या बोलता है? बैड, वर्स, वर्स्ट। कैंसर मतलब बैड। उसके अंदर अगर तुम्हारा सेकेंड स्टेज में कैंसर है, थर्ड स्टेज में है तो वर्स, फाइनल स्टेज में है तो वर्स्ट। तो वैसे ही अभिमान बीमारी है, बीमारी। इसलिए अभिमान को यदि हम तरतम्य न्याय से समझेंगे तो गुड, बेटर, बेस्ट नहीं आएगा, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसके विषय में हमारे आचार्य कहते हैं कि अभिमान के तीन प्रकार बताए उन्होंने। सबसे पहला प्रकार जिसको संस्कृत में कहते हैं मत या मध, जो कुंती महारानी ने मध कहा है और मत एक ही है, और दूसरा प्रमत्त, और तीसरा है उन्मत्त। तो ये तरतम्य न्याय के अनुसार अभिमान के तीन अलग अलग लेवल्स हैं। तो मत्त का अर्थ है इंटॉक्सिकेटेड, जैसे कुंती महारानी अपने उस श्लोक में कहा एद मान मध या एद मान मत्त, मतलब इंटॉक्सिकेटेड। ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि प्रमत्त। जब कोई अभिमान के कारण प्रमत्त होता है तो उसके अंदर पागलपन छाता है, इंसैनिटी, बिकम्स इनसेन। और उन्मत्त की स्थिति में डेंजरस, अब वो खतरनाक है, विथ स्कल एंड क्रॉस बोन्स, ही शुड बी स्टैम्प्ड विथ स्कल एंड क्रॉस बोन्स, डेंजरस। 440 वोल्ट लिखते ना, हड्डी खोपड़ी के साथ। तो ये है उन्मत्त की स्थिति। तो मत्त, प्रमत्त और उन्मत्त। तो तरतम्य न्याय से हम अभिमान को इस प्रकार से पहले समझेंगे। अब हम यदि कुछ उदाहरण अगर लें उन्मत्त, प्रमत्त और मत्त के, तो मत्त का उदाहरण सबसे पहले नलकुवर और मणिग्रीव। तो नलकुवर और मणिग्रीव दामोदर लीला में वो केवल मत्त थे, और वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक तो इतनी मदिरा पी रखी थी उन्होंने, तो मदिरा के वजह से मत्त थे, और दूसरा मद उनके अंदर क्या था कि कुबेर के वो पुत्र थे, तो वो एक अभिमान उनके अंदर था कि हम कुबेर के पुत्र हैं, हम कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकते, चाहे कैलाश में हो चाहे भौतिक संसार में हो, कहीं पर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक उनको अभिमान था, लेकिन वो उसके अंदर पागलपन नहीं था और डेंजरस नहीं था, वो केवल मत्त। तो नलकुवर और मणिग्रीव का जो अभिमान था वो तरतम्य न्याय के अनुसार बैड कहेंगे, बैड, इट वॉज इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग बैड। और प्रमत्त का उदाहरण कर्ण का दिया गया कि कर्ण का अभिमान क्या था कि कर्ण को जब द्रौपदी ने सूत पुत्र कह दिया स्वयंवर के समय, द्रौपदी स्वयंवर के समय कर्ण को जब सूत पुत्र बोल दिया, तो द्रौपदी को क्या पता कौन है ये, द्रौपदी ने तो सत्य कहा था कि ये सूत का पुत्र है, लेकिन वो बात कर्ण भूल नहीं पाया कि मैं बदला लेकर रहूंगा। तो द्रौपदी से बदला लेकर रहूंगा और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ तो अर्जुन को भी नहीं छोड़ूंगा। तो कर्ण को प्रमत्त क्यों कहा गया है, कर्ण को इनसेन, इनसेन का अर्थ है पागल। तो ये पागलपन कर्ण के अंदर क्या था कि कर्ण को जाकर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भाई तुम तो सबसे ज्येष्ठ पांडव हो, तुम तो युधिष्ठिर महाराज के भी बड़े भाई हो, अर्जुन तो छोड़ दो, तुम तो अर्जुन के भाई तो हो परंतु युधिष्ठिर महाराज के बड़े भाई। तो युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को जाकर उसका असली परिचय दे देते हैं, उसको बोल देते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम ज्येष्ठ पांडव हो, तुम अगर पांडवों की ओर से युद्ध करोगे तो पांडव तो जीतने ही वाले हैं और तुम राज गद्दी पर बैठोगे। ये अंग का राज क्या दिया है दुर्योधन ने तुमको, अंगराज बना हुआ था ना कर्ण, तो ये अंगराज क्या, तुमको तो पूरी पृथ्वी का राज्य मिलेगा तुम यदि पांडवों की ओर से युद्ध करोगे। तो कर्ण को ये सब कुछ पता था युद्ध के पहले, लेकिन अभिमान बीच में आया, नहीं मैं नहीं, मैं पांडवों की ओर से युद्ध नहीं, उनको मैं खत्म करूंगा। भाई क्या पांडवों ने उसके अगेंस्ट में कुछ किया था? कुछ नहीं किया था, ऐसे ही एमए ही जिसको बोलते। तो महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि कर्ण का पागलपन क्या था, और कर्ण के पागलपन को हम अपने अभिमान से कैसे समझ सकते हैं। तो बहुत सुंदर महाराज इसका कंपैरिजन कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे अर्जुन और कर्ण का युद्ध महाभारत में, जब अंत में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। तो अर्जुन समझ गए कि कर्ण जो है वो मुझसे अच्छा धनुर्धर है। तो खैर वो दूसरा मुद्दा है, महाराज जो एक ये मुद्दा कह रहे थे उस पर हम गौर करेंगे। महाराज कह रहे थे कि कर्ण एक पांडव था, परंतु गलत संगति के वजह से कर्ण अपने आप को पांडव नहीं मानना चाहता था। दुर्योधन के संग के वजह से कर्ण अपने आप को दुर्योधन का मित्र मानना चाहता था। तो महाराज बोल रहे थे उसी प्रकार से हमारा जो अहंकार है वो शुद्ध अहंकार क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, परंतु तीन गुणों के संग में ये मिथ्या अहंकार बन जाता है, फॉल्स ईगो बन जाता है। महाराज बोले वी हैव अ ट्रू ईगो विच इज लाइक कर्ण, द एल्डर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर, दैट इज ट्रू ईगो, बट दैट कर्ण इन एसोसिएशन विद दुर्योधन इज फॉल्स ईगो। कुंती पुत्र, एल्डेस्ट पांडव, दैट इज ट्रू ईगो, दुर्योधन्स फ्रेंड, दैट इज फॉल्स ईगो। तो जानते हुए भी हम लोग यहां पर इस भौतिक संसार में कर्ण की तरह भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध दुर्योधन की पार्टी में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, कि नहीं मैं सरेंडर रहूंगा कृष्ण को। भगवान बोल रहे हैं कि भाई तू मेरा अंश है, तू आध्यात्मिक संसार का निवासी है, तू यहां का नहीं है, नहीं मुझे नहीं जाना। भगवान बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी कर्ण की तरह हटी बनकर हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो दुर्योधन के फेंके हुए टुकड़ों पर ही जीऊंगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भगवान को, जब भी हम इंद्रिय भोग में लगते हैं, जब भी हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, तो हम भगवान को कर्ण की तरह बोल रहे हैं कि आप चाहे कितना भी मुझे समझा दो, मैं तो माया देवी के फेंके हुए टुकड़ों पर ही जीऊंगा, मुझे नहीं चाहिए आपका ये आध्यात्मिक संसार, मुझे बस ये भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भ्रमण करते हुए अलग अलग योनियों में पीड़ा पाते हुए ये माया देवी के फेंके हुए इंद्रिय भोग के टुकड़ों पर ही जीना है, मुझे नहीं चाहिए आपका आध्यात्मिक संसार। ये है कर्ण, इसको कहते हैं पागलपन। पागलपन क्या है, जो अपनी असली पहचान को भूलकर, पागल लोग ये होते हैं ना, आप जाओ पागल खाने में, पागल व्यक्ति अपनी असली पहचान को भूलकर कुछ और ही बना फिरता उधर रहता है। तो हम लोग इस भौतिक संसार में है क्या, ये भौतिक संसार पागल खाना है बड़ा, और इस बड़े पागल खाने में हम सब पागलों की तरह घूम रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं यहां का प्रधानमंत्री हूं इस देश का, कोई बोलता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, कोई बोल रहा है कि मैं पुरुष हूं, कोई बोल रहा है मैं स्त्री हूं। ये सब जो गलत गलत उपाधियां लेकर हम घूम रहे हैं, पागलों की तरह इस मेंटल असाइलम में घूम रहे हैं, इसको कहते हैं प्रमत्त कर्ण। अपनी असली पहचान को भूलकर दुर्योधन से जबरदस्ती अपनी पहचान बना रहा था वो है प्रमत्त। और उन्मत्त इंद्र की सोमरस का नशा तो करता ही था इंद्र, उसके बाद फिर जो चार प्रकार के अभिमान वो भी थे। तो मत्त फिर बाद में अपनी पहचान भूल गए कि भाई तुमको तो एक सचिव बनाया है, तुम तो एक सचिव सेक्रेटरी हो भगवान के, तुम ये ब्रजवासियों से जो डिमांड कर रहे हो कि मेरी पूजा करो, तुम क्या भगवान बने फिर रहे हो यहां पे। प्रमत्त अपनी आइडेंटिटी भूलकर, और फिर फाइनली किया क्या, खत्म करो, संवर्तक भेजकर, डेंजरस, आतंक फैलाया। भाई ठीक है, केवल उतना, अगर उतने तक सीमित रहते इंद्र कि उसको ही पी जा, अरे मेरी पूजा क्यों नहीं की, क्यों नहीं। कई बार होता है ना, हमारे पास ताकत नहीं होती तो हम लोग ऐसे ही, कोई अगर हमारी पूजा नहीं करता, आदर सत्कार नहीं करता है, तो उसको ऐसे ही पी जाते हैं अंदर, ठीक है क्या करें। तो वो डेंजरस लेवल पर नहीं जा रहा है, लेकिन जब अभिमान उन्मत्त की स्थिति तक पहुंचता है तो तरतम्य न्याय के अनुसार वो डेंजरस, तब फिर हम आतंकवादी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आतंकवादी, आध्यात्मिक आतंकवाद फैलाते हैं फिर टेररिस्ट, डेंजरस टेररिस्ट। तो ये है तरतम्य न्याय के अनुसार ये तीन लेवल्स। तो अब अगर हम ये फिर से चार जो प्रकार के अभिमान है इसमें देखें, तो ये भी तीन लेवल्स, चार लेवल्स पर हैं, जो कि तरतम्य न्याय के अनुसार हमको एक फोर्थ लेवल तक लेके जा रहे हैं, कि उसके अंदर भी बैड वर्स, वर्स्ट के अंदर भी हम और अंदर घुसते जा रहे हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन में ये सब का कॉकटेल बना बना कर इतने जन्मों से पी रहे हैं। तो इंद्र, इनकी जो मेंटालिटी बताई गई है, और ये अब हमें ध्यान से समझना है कि हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारी मेंटालिटी कहां तक ये सत्य साबित होती है। तो इंद्र की ये दो मेंटालिटी, अगर उनके पूरे अभिमान को हम ये दो चीजों में बांट दें, विच इज दी हॉलमार्क ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, इंद्रज मेंटालिटी इज दी हॉलमार्क ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, कंपैरिजन, कंपटीशन। अब देखिए इस पूरे भौतिक संसार में चल क्या रहा है, मनुष्य समाज में क्या चल रहा है, मनुष्य समाज में ही चल रहा है कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहो कि उसने ये किया मैं भी ये करूंगा, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। उसके घर में फ्लैट स्क्रीन टीवी आया, मेरे घर में भी फ्लैट स्क्रीन टीवी, और वो लाने के लिए फिर मैं कॉम्पीट करूंगा, किससे, दूसरों से या उसी से। तो इंद्र क्या किए, इंद्र ने भी कंपेयर किया कि अरे मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा, कौन है ये गोवर्धन और कौन बोल रहा है ये गोवर्धन पूजा करने के लिए। सो इंद्र स्टार्टेड कंपेयरिंग हिज वर्शिप विद गोवर्धन पूजा, इंद्र स्टार्टेड कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद कृष्णा। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितम मानिनम, भगवान को गाली गलौच करने लगे कि ये बालिश, ये अज्ञ, ये अपने आप को पंडित मान रहा है, वाचालम बातूनी मर्त्यम, यहां तक बोल दिया भगवान को। क्या बोल दिया इंद्र ने भगवान को, मर्त्यम, कि ये एक मर्त्य व्यक्ति. सो ही स्टार्टेड टू कंपेयर हिमसेल्फ विद गोवर्धन एंड कृष्णा एंड देन कॉम्पीट. जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया तो इंद्र ने क्या किया, अब मैं कॉम्पीट करूंगा संवर्तक भेजकर. तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यह अंतर है, कंपैरिजन लीड्स टू जेलेसी एंड कॉम्पिटिशन लीड्स टू एनवी. तो जेलेसी और एनवी में अंतर क्या है, जेलेसी इज पैसिव. मतलब अगर किसी को किसी के प्रति जलन हो रही है लेकिन उसने उसका कुछ खराब किया नहीं तो उसको कहेंगे जेलेसी, मन में ही रखा है बस, जलन हो रही है और जल रहा है जल रहा है, खुद ही अपने आप को जला रहा है उससे. एनवी क्या है, उसको जलाऊंगा अभी मैं, उसको नीचे खींचूंगा, उसका पतन कराऊंगा, उसको नीचे झुकाऊंगा. सो व्हेन जेलेसी इज पुट इन एक्शन इट्स कॉल्ड एनवी. Envy is jealousy in action. तो इंद्र ने वही किया, पहले जलन हुई कि मेरी पूजा क्यों नहीं, मेरी पूजा क्यों नहीं, ये गोवर्धन की पूजा, तो जलन हो रही जलन हो रही. फिर उसको एक्शन में कैसे डाला, संवर्तक को भेजकर, उसको हो गया एनवी. फिर वो है एनवी. अब देखो इस भौतिक संसार में माया देवी ये दो चीजों को इस्तेमाल कर कर हमें भगवान से दूर कर कर रखती है. और भक्तों के समुदाय में भी वी स्टार्ट कंपेयरिंग. जैसे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है आजकल, रिन साबुन का एडवर्टाइजमेंट, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे दिखाते हैं वो लोग, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, कंपैरिजन, आई विल कॉम्पीट, रिन लगा के आई विल कॉम्पीट. तो वैसे ही हम जब आध्यात्मिक समुदाय में भी आते हैं तो वही मेंटालिटी हमारी आ जाती है, उसके काउंसिली मेरे काउंसिली से ज्यादा कैसे. एक ही चीज है, रिन साबुन जो बेच रहे हैं और हम लोग यहां पर आकर अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि उसके काउंसिली मेरे काउंसिली से ज्यादा कैसे, उसकी दीक्षा मेरे से पहले कैसे, एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि एक मंदिर में दो भक्तों के बीच में कुछ अनबन हुई और एक भक्त दूसरे को कहते हैं कि मैं तेरे से सीनियर हूं तेरी हिम्मत कैसे. तो भाई सीनियर का उनका क्राइटेरियन क्या था, एक ही दिन दीक्षा हुई, दोनों की दीक्षा एक ही दिन हुई है लेकिन लिस्ट में इसका नाम पहले था. देखो अभिमान कहां कहां तक छोड़ता नहीं हमको कि एक ही दिन दीक्षा हुई है लेकिन लिस्ट में मेरे को पहले बुलाया था तेरे से, मैं सीनियर हूं मैं पहले कनेक्ट हुआ. कितना सीनियर, 5 मिनट सीनियर. सोचो अभिमान इतना अंदर कूट कूट के भरा है कि 5 मिनट की सीनियोरिटी को भी पकड़कर हम रखते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना चाहते कि उसके बलबूते पर मैं तेरे को नीचे दिखाऊंगा कि मैं 5 मिनट सीनियर हूं. बोल तू कैसे बोल सकता है मेरे सामने. तो ये कंपैरिजन कंपटीशन लीड्स टू जेलेसी एंड एनवी. ब्रज भाव क्या है, ब्रज भाव इसका ठीक विपरीत है, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑपरेशन. ये है ब्रज भाव, कि जब हम अगर हमें वृंदावन लाना है, खाली वृंदावन कॉलोनी में रहने से वृंदावन नहीं आएगा, अगर वृंदावन कॉलोनी में हमें ब्रजभाव लाना है तो वृंदावन कॉलोनी में ब्रजभाव कैसे लाएंगे हम? ये दो चीजें टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, ये है ब्रजभाव। इंद्र का भाव क्या है? कंपैरिजन एंड कंपटीशन। ब्रज भाव है कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑपरेटिंग। तो कंपैरिजन और कंपटीशन से क्या उत्पन्न होता है? जेलेसी एंड एनवी। कॉम्प्लीमेंटिंग से वी प्लीज कृष्णा, कोऑपरेशन से वी रिलीज कृष्णाज मर्सी अपॉन अस। कृष्ण की जो कृपा है वो कृष्ण जैसे कि डैम होता ना, डैम, तो डैम के अंदर भगवान अपनी कृपा बांध के रखते हैं, इसलिए हिंदी में डैम को क्या बोलते हैं? बांध। एंड व्हेन कृष्णा सीज दैट डिवोटीज आर कोऑपरेटिंग अमंगस्ट ईच अदर, कृष्णा रिलीजेस द डैम ऑफ हिज मर्सी। सो इफ वी वॉन्ट कृष्णाज मर्सीफुल डैम टू बी रिलीज्ड, व्हाट डू आई हैव टू डू? ऑपरेट। बट बिफोर दैट वी नीड टू गेट कृष्णाज अटेंशन, फॉर दैट वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसके विषय में मैं सोच रहा था, अगर हम दोनों चीजें लें, कंपेरिजन कॉम्प्लीमेंटिंग, अगर ये दोनों चीजों को हम लें, मान लो कि मैं मेरे ही गॉड ब्रदर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, कॉम्पीट कर रहा हूं, तो हर समय कंपैरिजन और कंपटीशन अगर किसी के साथ हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ गुण होगा तभी करेंगे हम। अगर उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है तो हम उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को। अभी कोई रास्ते चलता भिखारी है, हम उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, देखो उसके पास ना खाने के लिए पैसे नहीं है, कटोरा पूरा खाली है और मेरे बैंक में इतने पैसे, उसके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। अक्सर हमारा कंपैरिजन किसके साथ होता है? जो हमारी ही डिपार्टमेंट के होते हैं, जो हमारे ही सेवा में एक साथ सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान का कुकिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो भगवान के कुकिंग के समय फिर हम लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं। अगर दो भक्त भगवान राधा मदन गोपाल की कुकिंग कर रहे हैं तो वो लोग उसमें से अगर कोई ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को दूसरे से, तो वो ताज रेसिडेंसी में जो कुक है उससे कंपेयर नहीं करेगा अपने आप को। फाइव स्टार होटल है ना ताज, वहां पर कोई कुक अगर है तो अपने आप अपनी कुकिंग को उससे कंपेयर नहीं करेगा। वो किससे करेगा? ये जो बगल में मेरे साथ कुकिंग कर रहा है, इसने अगर पकोड़ा बनाया तो मैं बटाटा वड़ा बना के बताता हूं। हाँ, ये है कि भगवान को दोनों मिल रहा है, लेकिन भगवान उसमें प्रसन्न इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके पकोड़े के ऊपर अपना बटाटा वड़ा रखकर भगवान को देना चाहते हैं कि कटोरी में इसका पकोड़ा नीचे होना चाहिए, मेरा बटाटा वड़ा ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर तुलसी होनी चाहिए। तो ज्यादातर हमारा कंपैरिजन और कंपटीशन किससे होता है? वही भक्तों के साथ होता है जो हमारी तरह की सेवा कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में है। कोई अगर कीर्तनकार है तो कीर्तनकार जो होते हैं वो लोग फिर कीर्तन जब करते हैं तो मैं ऐसा कीर्तन करूंगा कि छक्के छुड़ा दूंगा जिसने पहले किया कीर्तन उसके, मतलब बाकी बेचारे जो कोरस में उनकी चिंता नहीं उसको, वो बेचारे आपका ट्यून झेल पाएंगे कि नहीं. वी आर लीस्ट वरीड अबाउट द पीपल इन कोरस वेदर हाउ मच दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ आवर कीर्तन. वी आर मोर कंसर्न अबाउट मेरे से पहले जिसने कीर्तन किया और उसने जो ट्यून गाई है, मैं ऐसी ट्यून गाऊंगा कि वो भी नहीं गा पाएगा कभी जिंदगी में, कभी याद नहीं रख पाएगा, हारमोनियम पे भी नहीं बजा पाएगा वो. सात सुरों के परे गाऊंगा मैं, मतलब जो भगवान ने सात सुर बनाए उनके भी परे गाऊंगा मैं. तो अगर कुकिंग में, गार्लैंड मेकिंग, कुकिंग, कीर्तन, प्रीचिंग कि अगर उसने भागवतम क्लास 1.5 घंटे की दी, मैं अगली बार 2 घंटे की दूंगा. बेचारे बाकी ऑडियंस, उनकी जो हालत हो रही है वो तो पहले भी मरे हुए थे 1.5 घंटे के क्लास में. आप बेचारे ये दोनों की लड़ाई में वो और अधमरे हो रहे हैं. उसने अगर अपने भागवतम क्लास में 2 श्लोक बोले तो मैं 4 श्लोक मारूंगा. उसने अगर 4 कहानियां सुनाई तो मैं 8 कहानियां सुनाऊंगा. उसने अगर कहा कि गोवर्धन लीला के 8 कारण हैं तो मैं 16 कारण निकालूंगा. चाहे भगवान ने उन कारणों की वजह से उठाए भी नहीं होंगे, अपनी अगली गोवर्धन लीला में भगवान को उन कारणों की वजह से उठाना पड़ेगा फिर. तो ये उनसे ही हमारा कंपैरिजन और कंपटीशन होता है. हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा था कि हम अगर किसी दूसरे हमारे गॉड ब्रदर से कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिव मूड में जा रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द स्किल विच दैट गॉड ब्रदर हैज एंड हु इज ही रिप्रेजेंटिंग विद दैट स्किल. ही इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा. सो वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद कृष्णा. वी आर कॉम्पिटिंग विद कृष्णा. Why? Because Krishna says, yad yad vibhuti mat sattvam shrimat urjitam evava. Anything splendorous you see is my spark. It's my splendor and that's just a spark coming from my splendor. So if we are comparing with anyone, competing with anyone, we are eventually competing and competing with Krishna. और इसका रिवर्स जो हमने ब्रजभाव में देखा, इफ वी कॉम्प्लीमेंट एनीवन वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग कृष्णा. इफ वी आर कोऑपरेटिंग वी आर कोऑपरेटिंग विद कृष्णा. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रजभाव एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ Releasing Krishna's mercy in our life. भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें हमारे ऊपर न्योछावर करवानी है तो cooperation और complimenting. जैसे भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर की वो कथा कि गौड़िया मठ में उनके कुछ ब्रह्मचारी शिष्य कमरे में बैठकर एक ब्रह्मचारी की निंदा कर रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है. भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो जैसे ही गुरु महाराज को देखा उन्होंने तो सब चुप हो गए और सरस्वती ठाकुर ने केवल एक लाइन कहा. उन्होंने कहा, लेकिन वो कपड़े बहुत अच्छा धोता है अपने, और चले गए. उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो कपड़े बहुत अच्छा धोता है अपने, और चले गए। तो वो क्या बता रहे थे, जितना भी आप उसकी निंदा कर रहे थे उसके अंदर एक गुण तो मैंने अच्छा देखा। और वो सारे ब्रह्मचारी शिष्य उसके बाद वो उसका गुणगान करने लगे। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटिंग। अरे चाहे वो व्यक्ति के अंदर हजार दुर्गुण हो, उसके अंदर कोई तो एक गुण होगा, नहीं तो भगवान क्यों कहते थे कि वो मेरा अंश है। अगर भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा अंश है तो उसके अंदर कोई तो गुण होगा, सो व्हाई नॉट कॉम्प्लीमेंट, व्हाई ओनली सिंपली क्रिटिसाइज, व्हाई नॉट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है ब्रज भाव। तो आज के हमारे सेशन के अंत में आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम, शेयर योर केयर, कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसमें जो संतुष्टि मिलती है, और स्वयं के लिए हम जब कुछ करते हैं तो हाँ उसमें भोग मिलता है। स्वयं के लिए जब हम करते हैं तो भोग मिलता है, दूसरों के लिए करते हैं तो संतुष्टि मिलती है। एक बहुत वर्षों पहले एक मुझे किस्सा सुनाया गया था एक भक्त ने, जो चाइना से आए थे मायापुर, जब तमाल कृष्ण महाराज जिस वर्ष उनका देहांत हुआ तो वहाँ पर एक चाइनीज डिवोटी तमाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल, उन्होंने मेरे को एक, अभी मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे ध्यान में आया, उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो कि जापान में एक किस्सा हुआ था वो उन्होंने सुनाया। तो जापान में अक्सर वहाँ के जो घर वो लोग बनाते हैं वो लकड़ी के बनाते हैं या कार्डबोर्ड के बनाते हैं, ये कॉन्क्रीट के ज़्यादा घर नहीं होते क्योंकि भूकंप क्षेत्र है जापान, बहुत भूकंप वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए उनके जो घर हैं वो या तो थिक कार्डबोर्ड या लकड़ी इसके होते हैं। तो ये बता रहे थे, ये एक रियल इंसिडेंट हुआ जापान में कि एक व्यक्ति ने घर खरीदा और वो उनको दीवार बदलनी थी, तो अपने उनके जो लिविंग रूम की जो दीवार थी वो दो लेयर्स में थी, लकड़ी की थी, तो उनको जो पहली लेयर की लकड़ी की दीवार थी वो निकालनी थी और उसके बदले दूसरे अच्छी लकड़ी की दीवार लगानी थी। तो उन्होंने वो दीवार निकाली लकड़ी की, तो जब निकाला तो उन्होंने देखा कि जो अंदर वाली लकड़ी की दीवार थी और बाहर वाली लकड़ी की दीवार में जगह थी, स्पेस था, तो अंदर वाली जो लकड़ी की दीवार थी उसमें एक छिपकली, और वो छिपकली के एक पैर पर कील धसी हुई थी। और वो छिपकली छटपटा रही थी और कील धसी हुई थी, तो इन्होंने पता किया, वो जो ओनर था उसे पता किया, क्योंकि पहली बारी दीवार पर भी कील वहां पर थी, तो उन्होंने पता किया कि आपने इस दीवार पर कब कील ठोकी थी। तो ओनर को ध्यान में नहीं आया, उसने कहा कि पता नहीं, मेरे को तो ध्यान में नहीं। तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे याद है कि 5 साल पहले मेरी माँ का देहांत हुआ था और मेरी माँ की फोटो मैं इस लिविंग रूम के इस दीवार पर लगाना चाहता था, तो 5 साल पहले उसने कील ठोकी थी और वो कील ये दूसरी दीवार में ये छिपकली तक पहुंची और वो अंदर चली गई थी। उसने कहा कि हाँ वो कील वो पूरी अंदर चली गई, क्योंकि मैं ठोकता गया इतनी जोर से ठोक दिया कि वो कील अंदर चली गई। तो इसने 5 साल पहले उस छिपकली के वो पैर में गलती से वो कील ठोकी गई इसके द्वारा। तो ये जो अभी नया ओनर, इसने पता लगाने की कोशिश की कि 5 साल तक ये छिपकली जिंदा कैसे रही, एक जगह पर अपने एक पैर में कील ठुकी हुई ये छिपकली जिंदा कैसे रही। तो इसने ये कील निकाली नहीं, उसने देखना चाहा कि ये कैसे जिंदा रही। तो उसने देखा कि रात के समय करीब 10 बजे के बाद एक छिपकली आती है दूसरी, मुंह में उसके लिए खाना लेकर, आती है और उसको खाना खिलाकर वो चली जाती है। जो भी छिपकली का खाना होता है, खाना खिलाकर वो चली जाती थी। तो इस व्यक्ति ने रोज देखा, वो उसने कील निकाली नहीं तब तक, रोज देखना चाहता था कि ये रोज इसको कोई खिला रहा है क्या। तो 1 महीने तक ऑब्जर्व किया उसने, और 1 महीने तक रोज उसी समय वो दूसरी छिपकली आके इसको खाना खिला के जाती थी। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मेरे रोमांच, अभी भी मैं सुना रहा हूं मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं कि एक छिपकली के अंदर इतना कोऑपरेशन हो सकता है कि 5 साल तक एक छिपकली दूसरी छिपकली को खाना खिला रही है, ये जानते हुए कि वो बेचारी फंसी हुई है, असहाय अवस्था में है। तो सोचो, हम लोग जो एक गुरु के शिष्य, हम लोगों को कितना एक दूसरे के साथ सहकार्य करते हुए कोऑपरेट करना चाहिए। इफ एन इनसिग्निफिकेंट लिजर्ड, दैट स्पीशी कैन बी सो कोऑपरेटिव, व्हाट टू स्पीक ऑफ वी डिवोटीज हु आर क्लेमिंग आवरसेल्व्स टू बी वैष्णवस एंड फॉलोअर्स ऑफ कृष्णा, how much we should be cooperating amongst each other. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kisi ka koi prashna? Koi tika, tippani? To, hamara, agle, jo, सेशन होगा उसमें हम लेंगे कि देवराज इंद्र ने अपने कंपैरेटिव और कॉम्पिटिटिव मूड में लेकर किन किन को टारगेट बनाया। आपका प्रश्न है? तो आपको सूचित करना चाहेंगे कि सबसे पहले दशहरा की शुभकामनाएं आप सबको, मैं बोलना भूल गया। और आज शाम को दशहरा का विशेष प्रवचन, दशहरा महोत्सव का विशेष प्रवचन हमारे पूना से आए हुए मुरारी प्रभु देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुरारी प्रभु का स्वागत करें नासिक धाम में, श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में। 3 बार जोर से मुरारी प्रभु, हमारे जगदीश निताय प्रभु जो बगल में ही रहते हैं रामकृष्ण अपार्टमेंट बिल्डिंग में, उनके माता पिता यहाँ रोज सेवा में आते हैं। तो जगदीश निताय प्रभु के भाई हैं और उनके जो सुपुत्र, इनके जो माता पिता रोज आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये वैष्णव परिवार है। और मुरारी प्रभु को मैंने देखा है कि इतने सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि यदि आपका दिन का कोई भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, यदि आपने मुरारी प्रभु की मुस्कान देख ली, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेस बस्टर्स, द स्माइल ऑफ मुरारी प्रभु। तो आज मुस्कुराते हुए रावण का वध करेंगे वो। तो शाम को मुरारी प्रभु का प्रवचन है दशहरा के उपलक्ष में, तो आप सभी आमंत्रित हैं। जय श्री राम विजय उत्सव की, शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदी।
श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु की जय।